الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد من گزشتہ کل سیور اربع کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ چار سیریں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سبب ہے. ایک سیر اللہ، دوسری سیر فلا، تیسری سیر من اللہ، اور چوتھی سیر فل اشیاء. اب اس کی تفصیل یوں سمجھیں کہ جب انسان کا دل جاری ہوا تو اصل روح جو تھی وہ مضغہ سے نکلی اور اپنی اصل کی طرف گئی. روح کا مضغہ سے نکل کے اپنے اصل کی طرف، عالم امر کی طرف جانا، یہ سیر اللہ کہلاتی ہے. سیر اللہ کہلاتی ہے. پھر جب وہ اپنی اصل کے اندر پہنچ جائے تو اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں. پھر وہ وہاں سے واپس لوٹتی ہے تو اس کو سیر من اللہ کہتے ہیں. اور جب وہ واپس قلب کے اندر لوٹ آتی ہے اس کو سیر فی الاشیاء کہتے ہیں. بزرگوں نے اس کو آسان کرنے کے لیے دوسرے نام دے دیے. سیر اللہ کا نام رکھا عروج، سیر اللہ کا نام رکھا عروج، اور سیر فلا کا نام رکھا فنا. فنا اور سیر من اللہ کا نام رکھا نزول، واپس آنا نزول، اور سیر فل اشیاء کا نام رکھا بقا. فنا اور بقا، عروج اور نزول، تو یہ چار سیریں ہیں. چار کیفیتیں ہیں جو ہر لطیفہ کو پیش آتی ہیں. ہمارے پانچ لطائف ہیں تو پانچوں لطائف کو یہ سیریں پیش آتی ہیں تب وہ منور ہوتے ہیں. ہر ہر لطیفے کی اپنی فنا بقا ہے. تو پانچوں کو یہ پیش آئے گی چیز. چونکہ لطیفہ واپس لوٹتا ہے عالم امر کی طرف، تو عالم امر منور جگہ ہے، وہاں نور ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آندھی چل رہی ہو تو باہر سے کوئی بندہ آئے تو اس کے پورے چہرے کے اوپر ایک مٹی کی تہہ ہوتی ہے. یہ لطیفہ جب اوپر پہنچتا ہے اس عالم امر میں تو نور کی وجہ سے اس کے اوپر نور کی تہہ چڑھ جاتی ہے. جیسے برتن کو کلی کروایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک تہہ چڑھ جاتی ہے، اسی طرح لطیفے کے اوپر ایک نور کی تہہ آ جاتی ہے. آج کل تو گولڈ پلیٹنگ کا زمانہ ہے اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ لطیفہ اوپر جاتا ہے تو اس کی وہاں گولڈ پلیٹنگ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ وہاں سے لوٹتا ہے تو یہ سونا بن کے رہتا ہے، کیونکہ سونے کی تہہ جو چڑھ گئی تھی اس کے اوپر. اس فنا کی وجہ سے اس کا رجوع اللہ اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ پھر یہ اس دنیا میں آ جاتا ہے مگر اللہ کا تعلق اس سے جدا نہیں ہو سکتا. تو عروج سیر اللہ، نزول سیر من اللہ، فنا سیر فلا، اور بقا سیر فلشیا. یہ چار الفاظ کلیئر ہو گئے اچھی طرح؟ अब जरा ये बात समझ लें कि हर लतीफे की मुरब्बी तजल्लियात अलग है। पांच लतीफे हैं, कल्ब, रूह, सिर, खफी, अख्फा, और पांच ही मुरब्बी तजल्लियात हैं। चुनाचे सबसे पहले नंबर आता है कल्ब का। तो कल्ब की तजल्लियात जो मुरब्बी हैं उनका नाम है तजल्लियात अफ़ाल, तजल्लियात अफ़ालिया। चुनाचे तजल्लियात अफ़ालिया में जब कल्ब को रूज हासिल होता है तो अल्लाह ताला की जो सिफत है ना, फ़ाआलुल लिमा युरीद, वो उसको हासिल हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो वो फ़ाइल हकीकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पहचान लेता है। तो खुद ब खुद असबाब से नजर हट गई और मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर नजर जम गई। उसका ये यकीन बन जाता है अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं चीजों के बगैर, और चीजें कुछ नहीं कर सकती अल्लाह। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये बात की दावत चलाई, ये तसव्वुफ के मैदान का पहला सबक है। लतीफ़े कल्ब की कैफियत है, इस जिक्र सलूक के रास्ते की ये पहले दर्जे की कैफियत है। तजल्लियात अफ़ालिया का मुराकबा करने वाला बंदा वो अल्लाह ताला को फ़ाइल हकीकी विजदानी तौर पर मान लेता है। दलीलों की जरूरत नहीं रहती, उसके अंदर एक यकीन आ जाता है। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात को देखें, अल्लाह ताला पूछते हैं वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम आपके दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने जवाब दिया है या सॉल, ये असा है। फिर उसके फायदे भी बता दिए, अतवक्कौ अलैहा वहुशु बिहा ला गनमी वलिया फीहा महारिब उखरा, मेरे लिए और भी बड़े फायदे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे फायदे की चीज है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल कहा या मूसा, इसको डाल दीजिए जमीन। जब डाला फैजा है या हैयतुन तसा, वो तो दौड़ने वाला अजदहा सांप बन गया। फौजसा फी नफ्से ही खीफतम मूसा, मुझसे हम घबरा गए। कुलना ला तखफ, हमने फरमाया डरो नहीं, खुदहा वला तखफ, सनुईदुहा सीरत हल उला, हम पहले वाली सीरत, जब हाथ लगाया तो फिर असा बन गया। तो कुरान मजीद में जो ये वाकया बताया गया तो सिर्फ ये नहीं था कि भाई एक खिलाफ आदत चीज पेश आ गई, नहीं, एक सबक देना मकसूद था। क्या मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, जिस लाठी के आप फायदे गिनवा रहे थे, हमारे हुक्म से जमीन में डाला, वो ऐसी नुकसान देने वाली चीज बनी कि आप घबराई गए, और जिस चीज के नुकसान से आप घबरा रहे थे, हमारे हुक्म से हाथ लगाया तो फिर फायदे वाली चीज बन गई। तो सबक दिया प्रैक्टिकली कि चीजों में नफा और नुकसान डालना ये हमारी शान है। हम चाहते हैं तो नफा डाल देते हैं, हम चाहते हैं तो नुकसान। चीजें बर्तन है, बर्तन में पानी डालना, दूध डालना, ये मालिक का काम होता है। गर्म डालना, ठंडा डालना, ये तो मालिक का काम है। चाहें तो बर्फ वाला पानी डाल के दे दें, चाहें तो गर्म चाय डाल के दे दें। इसी तरह अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जिस चीज में चाहते हैं नफा रख देते हैं, जब चाहते हैं नुकसान रख देते हैं। तो हमें चीजों के पीछे नहीं जाना, असबाब से नजर हटानी है। और मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर नजर जमानी है। यह सबक यहां दिया गया। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने सबक समझ लिया, फिर उसके बाद उनकी नजर चीजों पे नहीं रही, जाहिर पे नहीं रही, ऊपर ही रही है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों के सामने खड़े हैं। जादूगर कहते हैं कि युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा, रस्सियां डाली जो यूं महसूस हुआ कि सांप हैं जो चल रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को यूं फील हुआ। अब आप जरा अपनी अकल से सोचें, चारों तरफ सांप हो, एक बंदा है जिसके हाथ में डंडा है, तो वो अगर जाहिर की नजर से सोचे तो जाहिर की अकल तो कहेगी कि भाई डंडा मजबूती से पकड़ो और जो तुम्हारे पास सांप आए उस सांप के सर पे मारो, तुम्हारे बचाव की यही सूरत हो सकती है। मगर हाथ से डंडा ना छोड़ना, ये उम्मीद की आखिरी किरण। तो मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलकहा मूसा, मूसा अलैहि सलाम नीचे डाल दो। अकल चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, क्या कर रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में डंडा ही तो है, तुम ये भी फेंक बैठे तो हाथ में क्या राग, खाली हाथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको नहीं देखा, उन्होंने वो किया जो अल्लाह ने कहा। जब असा जमीन पे डाला तो वो अजदहा बन गया और उसने उन सब सांपों को खा लिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पता था, तो उन्होंने नजर को नहीं माना, खबर को माना है। हम लोगों की है असबाब की जिंदगी, नजर की जिंदगी। अल्लाह ताला चाहते हैं कि नहीं, तुम खबर की जिंदगी। हमारे वादों पे यकीन करो, ये खबर की जिंदगी है कि अल्लाह के वादे सच्चे। जाहिर आंख देख रही है, वो गलत देख रही है। इंसान के सैकड़ों साल के तजर्बे गलत हो जाते हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया नील के किनारे खड़े हैं, आगे पानी का दरिया, पीछे फिरौन की फौज का दरिया। قال اصحاب موسى انا لمدركو, कहा मूसा अलैहिस्सलाम के साहबा ने, अब धर लिए गए, अब सैंडविच बन गए। قال كلا, फरमाया हरगिज नहीं, انما معي ربي سيهدين, एक यकीन भरी आवाज उठी, मेरा रब मेरे साथ है, जरूर रहनुमाई करेगा। ये यकीन कहलाता है, ये अल्लाह के वादों पे भरोसा होता है। जाहिर को नहीं देखा कि न जाए मानन न पाए रफ्तन, आगे जा नहीं सकते कि दरिया है और पीछे जा नहीं सकते कि इंसानों का दरिया। अब ऐसे वक्त में अकल से पूछें क्या करना चाहिए, कल कहेगी जनाब तुम्हारे हाथ में तलवारें तो है नहीं, एक डंडा ही तो है, तो बस फिर हिम्मत कर लो, फिरौन आए तो बस एक दो डंडे लगा देना सर पे उसके। और अल्लाह ताला से पूछो कि या अल्लाह मुझे करना क्या चाहिए, तो हुक्म आता है अनिद्रिब बे असाकल बाहर, पानी पे डंडा मारो। अकल चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, ये क्या कर रहे हो, पानी पे डंडा मारने से क्या होगा, मारना है तो फिरौन के सर पे मारो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह के वादे को देखा, और जब पानी पे डंडा मारा तो अल्लाह ने 12 रास्ते बना दिए और बनी इसराइल को उसमें से निकाल दिया, फिरौन को वर्क कर दिया। तो हुआ वो जो अल्लाह का वादा था, जो जाहिर की आंख ने देखा वो ठीक नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम वादी यती में है, कौम आ गई, पीने को पानी चाहिए, जीने को पानी चाहिए। अब अकल से पूछे क्या करें, अकल कहती है जनाब एक डंडा ही तो है, तो आहिस्ता आहिस्ता कुआं खोदें, गड़ा खोदें, पानी निकल आएगा, मगर डंडा टूटने ना पाए। अगर डंडा टूट गया तो उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाएगी। ये तो कहती है अकल। तो भी अकल कहती है कि डंडा टूटने ना पाए। और अल्लाह ताला से पूछा या अल्लाह क्या करूं, फरमाया अनिद्रिब भी असाक हजर, डंडा मारो पत्थर के ऊपर। अकल कहती है डंडा टूट जाएगा और ये सहारा भी खत्म हो जाए। मूसा अलैहि सलाम ने जरा नहीं परवाह की, उन्होंने वो किया जो अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे को ये यकीन मेरे साथ हासिल हो कि जो होना है अल्लाह की मर्जी से होना है। अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं, चीजों के बगैर चीजें कुछ नहीं कर सकती अल्लाह के बगैर। मूसा अलैहि सलाम ने पत्थर पे ऐसा मारा, अल्लाह ने 12 चश्मे जारी कर दिए। तो इन वाकयात में एक बात समझाई गई कि मेरे बंदो इन्ना वादल्लाहे हक, जो अल्लाह के वादे हैं वो सच्चे होते हैं। वलाकिन अक्सर हम ला यालमून, अक्सर नहीं जानते इस बात को, समझते नहीं है। तो जब तजल्लियात अफाल में लतीफे को सैर हासिल हो जाती है तो इंसान जौकी और विजदानी तौर पर अल्लाह को फाइल हकीकी मानता है। हर काम अल्लाह की मंशा से होता है, उसके बगैर कोई पत्ता गिर नहीं सकता। अब इसके चार बड़े फायदे हैं। इस कैफियत के हासिल होने के कितने फायदे हैं? चार बड़े फायदे हैं। सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला के वादों पर बंदे का यकीन कामिल हो जाता है। मिसाल, बायजिद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर अल्लाह ताला सारी मखलूक को मेरी अयाल बना दे और सारी जमीन को तांबे की बना दे और आसमान से एक कतरा भी पानी का ना गिरे, मुझे फिर भी यकीन है अल्लाह अपनी मखलूक को रिस्क पहुंचा कर रहे हैं। यह है अल्लाह के वादे पे भरोसा कि सारी मखलूक को मेरी अयाल बना दो, मेरे घर के मेरे डिपेंडेंट। इंसान को फिक्र होती है ना खाएंगे कहां से, और फरमाते हैं कि जमीन तांबे की बना दो, फसल नहीं उगती उसमें, और आसमान से एक कतरा भी पानी ना गिरे। फरमाते हैं मुझे फिर भी यकीन है अल्लाह अपने बंदों को रिस्क पहुंचा कर रहे। राबिया बसरिया अल्लाह की नेक बंदी मेहमान आ गए, ईशा का वक्त भी हो गया, अब खाना भी मेहमानों को खिलाना है। किसी ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने खादमा को कहा कि देखो कौन है। वो गई, उसने देखा और कहती है जी के कोई बंदा है, खाना लाया है। अच्छा रोटियां गिनो, उसने कहा जी 9 रोटियां। उसने कहा ये इसको वापस कर दो और कहो कि ये हमारा नहीं किसी और का। फिर 15 मिनट आधा घंटा गुजरा, फिर दरवाजा खटखटा, भाई कौन, ये कोई खाना लेके आया है? रोटियां गिनो कितनी है, 9 है, हमारा नहीं, वापस बैठो। फिर आधे पौने घंटे बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया अब तो मेहमान भी मुंतजर थे, इतनी देर हो गई तो कुछ तो खाना मिलेगा, और खाने का वक्त था, भूख भी सबको लगी हुई थी। तो फिर बांदी को भेजा, उसने कहा जी खाना लाया है। तो कितनी रोटियां? जी 9 रोटियां, हमारा खाना नहीं है। तो बांदी ने कहा जनाब वो 3 चक्कर लगा चुका, मेहमान बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं इस खाने को कबूल कर लेती, मेहमानों को खाना मिल जाएगा। उन्होंने कहा असल वजह यह है कि आज सुबह मेरे पास एक फकीर आया था और मेरे पास एक ही रोटी थी, वो मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दी, और अल्लाह का वादा है मन जा अबिल हसनत फलहू अशर अमसाल, तो मैंने एक दी थी मुझे 10 मिलनी चाहिए, तुम कहती हो 9 है। जब ये कहा तो बांदी ने हाथ जोड़े कि जी वो लाया तो 10 ही था, 1 मैंने अपने लिए रख ली थी। ये है अल्लाह के वादों पर भरोसा। तो सलूक में फिनायत हासिल होने पर सालिक को इतना कामिल यकीन हो जाता है। अब समझ में बात आती है कि हजरत मौलाना कासिम नौनौती रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों ये उसूल लिखवाया था कि दारुल उलूम के लिए मुस्तकिल आमदनी का कोई जरिया कबूल नहीं किया जाएगा, उनका यकीन बना हुआ था। उस यकीन के भरोसे उनका नहीं, तो फिर नजर हट जाएगी अल्लाह से और असबाब पे नजर लग जाएगी, तो कमजोरी है, ये तो धोखा है। सहाबा की भी नजर रहती थी इसी के ऊपर। खालिद बिन वलीद लानो का जब खूब फतुहात हो रही हैं, डंका बज रहा है उनकी फतुहात का, उमर लानो ने एक पैगाम भेजा कि मैं इस बंदे को भेज रहा हूं आपके आपके साथ, आपकी बजाय ये अमीर लश्कर होंगे, आपके पास चॉइस है, आम सिपाही बन के लड़ने हैं तो वहीं रहें, नहीं तो मेरे पास आ जाए मदीने में। वो चिट मिली तो खालिद बिन वलीद लानो ने फौरन कहा कि हां मैं एक आम सिपाही बन के अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहना ज्यादा पसंद करूंगा, मैं वापस क्यों जाऊं। खैर बाद में किसी ने खालिद बिन वलीद लानो से पूछा कि हजरत कोई माकूल वजह भी नहीं थी, और जब इस तरह आपकी फतूहात हो रही थी तो एक सिंपल ऑर्डर पर सिपा सलार से हटके आम फौजी बन के लड़ने लग गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? इसलिए नहीं पड़ा कि जब सिपा सलार बन के लड़ रहा था, जिस जात की रजा उस वक्त मुझे मतलूब थी जब सिपाही बन के लड़ा, तब भी रजा उसी की मतलूब थी, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं। अल्लाह को राजी करना है ना, सिपा सलार बन के करूं या आम सिपाही बन के। किसी ने उमर लानो से पूछा कि हजरत आपने उम्मत को इतने बड़े जर्नैल से महरूम क्यों किया, उसकी कायदाना सलाहियतों से डिप्राइव कर दिया। तो उमर लाल ने जवाब दिया हां मैंने उनको जर्नैल से तो महरूम कर दिया, उनका ईमान बचा लिया। कैसे? फरमाने लगे कि जहां जा रहे थे खालिद बिन वलीद लानो तो फतह हो रही थी, तो लोगों के दिल में यह बात बैठने लग गई थी कि खालिद बिन वलीद की वजह से फतह हो रही है, तो नजर असबाब पर जा रही थी, मैंने उनको माजूल कर दिया कि फतह अब भी होगी और नजर मखलूक पे जाने की बजाय खालिक की मदद के ऊपर होगी। इसको मतलब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के जहन में भी यही रहती थी कि अल्लाह पे नजर रहे। तो हमारे अकाबरीन इस सलूक के सफर में सैर इल्लाह के जरिए से ऐसा यकीन पा लेते थे। तो 4 फायदों में से पहला फायदा क्या कि अल्लाह के वादों पे फिर कामिल यकीन आ जाता है। हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास जब खर्चा कम हो जाता था ना, तो वालदा साहबा फरमाती थी कि वो जो बाकी होता था वो भी जल्दी से खर्च कर देते थे, जो थोड़ा सा बचा होता था वो भी जल्दी से खर्च कर देते थे। तो मैं पूछती थी कि लोग तो बचा के रखते हैं कि थोड़ा रह गया सोच समझ के खर्च करो, आप जल्दी से लगा देते हैं। फरमाया ये जेब खाली होगी तो और आएगा ना, जेब खाली होगी तो और आएगा ना। इतनी आलीशान मस्जिद बनाई और मोहल्ले वालों ने उसका नाम रखा बेचंदा मस्जिद। बेचंदा मस्जिद इसलिए कि चंदा ही नहीं करते थे, ऐसा भरोसा था अल्लाह के खजाने। तो हमारे अकाबिर को अल्लाह के वादों पर खजानों पर पूरा यकीन होता था तो नजर किस पर रहती थी। आज इसके ना होने की वजह से नजरें जो है वो मालदारों पर आ गई। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कोई सर भी खुजाए तो पीर साहब सोचते हैं शायद सर से ये कुछ पैसे निकाल के हदिया दे देगा। एक साहब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए, उस जमाने में जब उस्ताद का मुशाहिरा 2 रुपए और 3 रुपए होता था, उसने हजरत को डाक के जरिए 1,00,000 रुपया हदिया भेजा। 1,00,000 रुपया महीने की तनख्वाह 2 रुपए और हदिया भेजा 1,00,000। हजरत की आदत थी कि अगर कोई एहसान जितला के हदिया देता था तो कबूल नहीं करते थे। हाजतमंद और जरूरतमंद समझ के हदिया देता था तो भी कबूल नहीं करते थे। हां एहसान मान के हदिया देता था कि जी मेरे ऊपर एहसान करें, मेरा कप फिर ले लेते थे। अब इसने 1,00,000 रुपया हदिया भेजा और उसमें लिख दिया, जिससे पता चलता था कि भाई उसने लिखा है जी मैंने देखा आपको जरूरत है तो मैं हदिया भेज रहा हूं। हजरत ने वो 1,00,000 रुपया वापस कर दिया। उसको तो तवक्को ही नहीं थी, तो उसने फिर खत लिखा कि हजरत मैंने तो जरूरियात को देख के ये हदिया दिया और आपको ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जो इतना हदिया दे। तो हजरत ने उस खत के साथ जवाब लिखा कि आपको भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो 1,00,000 रुपए को लात मार दे, आपको भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा। क्यों ऐसी बातें होती थी? अल्लाह के वादों पे भरोसा होता था। वो समझते थे कि अल्लाह ही के खजानों से मिलना है और अल्लाह ने देना है। तो 4 फायदों में से पहला फायदा क्या? अल्लाह के वादों पे काम है। अगर बताएं ऐसी ईमान की कैफियत हो जाए तो जिंदगी का मजा ना आ जाए। दूसरी बात कि जब ये यकीन बैठ गया कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं, तो फिर किसी चीज के मिलने से इंसान को हद से ज्यादा खुशी नहीं होती और किसी चीज के चले जाने से इंसान को हद से ज्यादा। कुरान मजीद की एक आयत लकैला तअसौ वला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आता, इस पे कामिल अमल हो जाता है बंदे का। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तिजारती जहाज चलते थे, इतला आई कि हजरत वो आपका एक तिजारती जहाज सामान लेके जो आया था वो डूब गया। حضرت نے سن کے فرمایا الحمدللہ، سننے والے حیران کہ ڈوبنے پہ بھی کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا، حضرت وہ جو جہاز تھا بس وہ ڈوبتے ڈوبتے کنارے پہ لگ گیا، بچ گیا. حضرت نے فرمایا الحمدللہ. اب مجلس میں بیٹھنے والے ہیں نا کہ ڈوبنے کی اطلاع پہ بھی الحمدللہ اور بچنے کی اطلاع پہ بھی الحمدللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ فرمایا کہ جب مجھے اس کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تھی تو میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، مجھے دل میں اس پہ کوئی افسوس نہیں تھا نقصان کے اوپر، میں نے کہا الحمدللہ. اور جب بچنے کی اطلاع ملی میں نے پھر دل میں جھانک کے دیکھا تو مجھے اس کے اوپر کوئی خوشی نہیں، میں نے کہا الحمدللہ. تو چیز نصیب ہو جائے تو بھی الحمدللہ، اور اگر ہاتھ سے چلی جائے تو بھی الحمدللہ. یہ اللہ والوں کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس پر عمل نصیب ہو جاتا ہے. تیسری چیز کہ جب ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا دیکھتا ہے بندہ تو مخلوق کی مدح اور ذم یہ برابر ہے. کوئی تعریفیں کرتا رہے تو انسان پھولتا نہیں، کوئی مذمت کرتا رہے تو انسان ڈپریس نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ تعریف کرنے والے کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے اللہ اس سے کروا رہے ہیں. اور جو آ کے مذمت کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری مذمت کر رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے. تو ایک بزرگ تھے، ان کی کوئی تعریف کرتا تو وہ کہتے من می شناسیم، کوئی مذمت کرتا کہتا من می شناسیم. نے کہا جی کیا مانا آپ کا؟ ان کا کہ بول تو یہ رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ میں پہچانتا ہوں کہ کون یہ کروا رہا ہے، من می شناسیم میں پہچانتا ہوں. کہ اصل میں تو اللہ تعریف کروا رہا ہے یا اللہ اس کی زبان سے. تو ایسے بندے کے لیے پھر دین بھی چلنا بہت آسان، کہ دین کے معاملے میں انسانوں کی مدح اور ذم اس کی نظر میں برابر ہو جاتے. تیسرا فائدہ نہیں چوتھا فائدہ کہ انسان عزت اور ذلت پھر کس کے ہاتھ میں دیکھتا ہے؟ تو یہ جو ہر وقت ہوتا ہے او جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دینا، حکم خدا کو چھوڑ دینا، دین کو چھوڑ دینا، لوگ کیا کہیں گے. تو نظر لوگوں سے ہٹ کے لوگوں کے پروردگار پہ آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عزت ملے گی تو بھی اللہ کے حکم سے اور ذلت ملے گی تو بھی اللہ کے حکم سے. عزت اور ذلت تو وہ دینے والا ہے، نفع اور نقصان دینے والا اللہ ہے. جب تجلیات افعال کی سیر نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا کیا معنی؟ کہ انسان کی نظر اللہ پہ پکی ہو جاتی ہے کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے. تو مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ تعالی کی نظر طرف نظر جم جاتی ہے. تو پھر ایسا بندہ شیطان کے ہاتھے نہیں آتا، شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. کیسے محفوظ ہو جاتا ہے؟ حضرت مجدد ثانی حضرت نے ایک حکایت لکھی ہے مکتوبات میں، فرماتے ہیں کہ شیطان بدبخت ایک مرتبہ جا رہا تھا، ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، پھندے اٹھائے ہوئے تھے، تو کسی نے دیکھا تو اس نے پوچھا ملون ये तेरा क्या हाल है, हड्डियां निकली हुई हैं और फंदे लेके जा रहे हो। कहने लगा कि हां, कुछ लोगों के लिए मुझे फंदों की जरूरत पड़ती है। मेरे लिए कौन सा है? कहने, तेरे लिए तो फंदे की जरूरत नहीं, तो वैसे ही है, तेरे जैसे को तुम्हें वैसे ही है। फंदों की जरूरत बाज लोगों के लिए पड़ती है। उसने कहा, तो कमजोर क्यों? कहने लगा, क्या बताऊं कि कुछ लोग हैं जिन पे ये मेरे फंदे असर ही नहीं करते, उन्होंने मुझे कमजोर कर दिया। उसने कहा, वो कौन है? कहते, आप तुझे दिखाता हूं। तो फरमाते हैं कि शैतान ने गधे की शक्ल अपनाई है, ये गधा। तो उसने गधे की शक्ल अपनाई और एक बुजुर्ग थे बूढ़े मियां, जो कपड़ा बना रहे थे, तो इसमें लंबे लंबे धागे होते हैं, खड्डी से कपड़ा बनाते हैं। तो वो गधे की शक्ल में आया और दौड़ता हुआ आया और आके उसने जो लत्ती लगाई, सारे धागे तोड़ दिए। अब वो धागे तोड़ के भाग गया। वो बड़े मियां उठे और बड़े सुकून से एक एक धागे को बिस्मिल्ला पढ़ रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं, बिस्मिल्ला पढ़ रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं, बिस्मिल्ला पढ़ रहे हैं, नॉट लगा। और फिर अपना काम शुरू कर दिया। ये कुछ देर के बाद दोबारा आया, फिर उसने धागे तोड़े। बड़े मियां, न उन्होंने गुस्से का इजहार किया, न उन्होंने गाली दी, न उन्होंने कोई डंडा उठाया शैतान को मारने के लिए। फिर बिस्मिल्ला पढ़ा, धागे जोड़े। शैतान ने कहा कि देखो, ऐसे बंदे हैं कि मैंने जो कुछ किया, इस बंदे को इससे भी गुस्सा नहीं आया। ये गुस्से में आएगा तो मेरे चक्कर में फंसेगा ना। ये वो लोग हैं जिन पे मेरे दाव असर नहीं करते। तो इमाम रब्बानी मुजद्दद शाह ने अपना ये वाकया लिख के फरमाते हैं कि ये बुजुर्ग, जिनका ईमान समझने वाले इतना कामिल ईमान समझते हैं, इन्होंने तसव्वुफ के पहले सबक में फिना हासिल की हुई थी। यानी लतीफे कल्ब में, तजलियात अफाल में इनको फिना हासिल हो गई थी, इसलिए उनका ईमान ऐसा था कि वो समझते थे कि धागे इसने नहीं तोड़े, अल्लाह ने तुड़वाए हैं। जब अल्लाह ने तुड़वाए हैं तो फिर बेजारी किस बात की, फिर गुस्सा किस बात का। इतनी पुरसुकून हो जाती है जिंदगी कि ये जो हम हरकतें करते हैं ना, छोटी छोटी बात पे उलझ पड़े, इसने वो कर दिया, ये वो कर देगा, ये ऐसे है, सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह की जात पे नजर रहती है। तो तजल्लियात अफ़आल में सैर हासिल होने से इंसान को ऐसा ईमान मिलता है जिसके अंदर ये खूबियां होती हैं। एक तो वादों पे पक्का यकीन, दूसरा किसी चीज के मिलने से इंसान को हद से ज्यादा खुशी नहीं होती और जाया होने से डिप्रेशन नहीं होती। दीन के मामले में मदह और जम बराबर हो जाती है और इज्जत जिल्लत मखलूक की बजाय वो खालिक की तरफ देखता है। खूबसूरत ईमान है जो पहले कदम पे हासिल होता है। फिर दूसरा सबक है, उसको कहते हैं लतीफ रूह। उसकी सैर तजल्लियात सिफात सबूतिया में होती हैं और उसकी कैफियतें फिर बंदे को मिलती हैं। फिर लतीफे सिर की सैर शयूनात जातिया में होती है, तो उसकी सिफात मिलती हैं। फिर लतीफे खफी की सैर सिफात सलबिया में होती हैं, तो उसकी सिफात मिलती हैं। और लतीफे अख्फा की सैर शान जामे उसमें होती है, फिर इंसान को उसकी सिफात मिलती है। आप सोचिए, जब पहले कदम पे ईमान का ये हाल था तो फिर पांचवें पे ईमान का क्या हाल होगा, कितना खूबसूरत ईमान हासिल होगा फिर बंदे। ये वाकई हिम्मत करके हासिल करने वाली चीज है। तो दो तरह की फिना इंसान को हासिल होती है, एक को कहते हैं फिनाए कल्ब और एक को कहते हैं फिनाए नफ्स। एक को कहते हैं फिनाए कल्ब और एक को कहते हैं फिनाए नफ्स। समझ लें कि इसमें भी क्या फर्क है। बंदे की कैफियत एक तो यह है कि गुनाह की तरफ मिलान तो है लेकिन उसने अपने आप को गुनाह से रोका है, अपने आप को गुनाह से रोका हुआ है कि नहीं गुनाह करना। तबीयत मायल होती है मगर गैर महरम की तरफ नहीं आंख उठा के देखना। तबीयत में सुस्ती है मगर नमाज कदा नहीं होने देनी। तो जब ये कैफियत हो कि मिलान तो हो मगर कंट्रोल इतना हो जाए कि इंसान उस मिलान की रौ में बह जाने की बजाय हर हाल में शरीयत के ऊपर अमल करने वाला बन जाए, इसको फिनाए कल्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिनाए कल्ब कहते हैं। और बुजुर्गों के इस्तलाह में इसको विलायत सुबरा कहते हैं। ये क्या है? विलायत सुबरा। और अगर बंदे की कैफियत ऐसी हो कि गुनाह की तरफ मिलान ही हो ना हो बल्कि कराहत हो, गुनाह की तरफ कराहत। अब आप कहेंगे कराहत कैसे हो सकती है? अच्छा भाई बताएं, आम लोगों को तो मौसीकी इतनी अच्छी लगती है कि कहते हैं ये रूह की गिज़ा है, लेकिन आप हजरात बताइए मस्जिद के इस माहौल में अगर किसी के फोन की घंटी बजेगी तो आपके दिल में खुशी होगी या कराहत होगी? कराहत होगी। क्यों नहीं बंद किया इसको? ये मौसीकी मस्जिद में। तो जिस तरह हमारी कैफियत मौसीकी के बारे में मस्जिद में होती है, अल्लाह वालों की यही कैफियत हर गुनाह के बारे में। तबाई तौर पर हम जो पैदाइशी मुसलमान हैं हमें सूअर से बहुत नफरत होती है। पैदाइशी तौर पर मां बाप ने सिखाया है, एक अच्छी चीज है। ऐसे भी लोग हैं कि जो उसका गोश्त मजे से खाते हैं, और अगर किसी मुसलमान को भूख लगी हुई हो और कोई कह दे जी कि इस बर्तन में पहले सुअर खाया तो वो बंदा उस हलाल गिजा को भी छोड़ देगा कि इसमें सुअर का गोश्त मिलता, उसकी तबीयत में मिलान नहीं होगा। तो जैसे सुअर के गोश्त के बारे में हम लोगों की तबीयत के अंदर एक कराहत अल्लाह ने डाल दी है, जो अल्लाह वाले होते हैं उनके दिलों में हर गुनाह के बारे में ऐसी कराहत आती है। तबीयत ही नहीं करती गुनाह करने, तबीयत कराहत करती है। बल्कि तो मकरूहात शरईया मकरूहात तबईया बन जाती है। जिनसे शरीयत कराहत करती है बंदे की तबीयत भी कराहत करने लग जाती है। अगर ये कैफियत हासिल है तो इसको कहते हैं फिनाए नफ्स। ये फिनाए नफ्स का मुकाम है और बुजुर्गों के अल्फाज में इसको विलायत कुबरा कहते हैं। तो गुनाह की कमिलान हो मगर इंसान शरीयत पर जमा रहे, ये विलायत सुबरा। और गुनाह की तरफ मिलान की बजाय गुनाह की कराहत दिल में आ जाए तो इसको कहते हैं विलायत कुबरा। वो फिनाए कल्ब है और ये फिनाए नफ्स। इसलिए इमाम रब्बानी मुजद्दद सानी रहमतुल्लाह ने लिखा है کہ فنائے قلب حاصل ہونے کے باوجود ارادہ باقی رہتا ہے، فنائے نفس میں آ کے بندے کا ارادہ ہی ختم ہو جاتا ہے، گناہ کا ارادہ ہی نہیں کرتا. کیا خوبصورت ایمان ہوگا کہ انسان گناہ کے بارے میں سوچے ہی نہ، اس کو فنائے نفس کہتے ہیں. تو ہمیں محنت کر کے لطیفہ قلب کی بھی فنا بقا حاصل کرنی ہے، لطیفہ روح، سر، خفی، اخفا، پانچوں لطائف. جب پانچوں میں فنا بقا نصیب ہو جائے گی تو پھر انسان کا ایمان بہت زیادہ منور ہو جائے. یہ ولایت کے مقامات کے اثرات ہیں، ثمرات ہیں. اس سے اوپر پھر کمالات شروع ہوتے ہیں. جو کمالات نبوت ہیں وہ اس سے اوپر شروع ہوتے ہیں. یہ تو پرائمری پاس کرتا ہے بندہ. اب آپ سوچیں کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں کیسا ایمان بنانے کے لیے راستہ کھول کے سمجھا دیا اور ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی. ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں ذکر کے بارے میں، ہاں بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ثواب ملے گا. یہ گمان چھوڑ دیں کہ صرف ثواب ملے گا، ذکر میں بیٹھنے سے خدا ملے گا. یہ ذہن میں رکھنا شروع کریں. اور خدا کو پانا یہ زندگی کا مقصد ہے. تو ہر لطیفہ اپنے لطیفہ سے نکلتا ہے اور اوپر اپنے اصل تک پہنچتا ہے. اس اوپر جانے کو کہتے ہیں سیر اللہ. جب اپنی اصل میں پہنچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیر فی اللہ. جب واپس آتا ہے تو کہتے ہیں سیر من اللہ. جب اپنے مقام پہ آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیر فی الاشیاء. تو یہ چار سیریں جب مکمل ہو جائیں تو انسان کی یوں سمجھیں کہ سلوک مکمل ہوتا ہے. اس کا علم جو ہے اور معرفت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی معرفت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ پہلے سالک کو تجلیات افعال کا علم ملتا ہے، پھر صفات کا علم ملتا ہے، پھر شیونات کا علم ملتا ہے، اور آخر کے اوپر سالک کو پھر ذات کا علم ملتا ہے. تو اصل تو علم ہی ہے نا. یہ جو سیر ہے نا یہ کوئی نقل مکانی نہیں ہے کہ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. یہ اصل میں سیر علمی ہے، علمی سیر. یہ علمی طور پر انسان منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ انتقال علمی ہے کہ پہلے وہ علمی کیفیت حاصل نہیں ہوتی، یقین کی، جو بعد میں حاصل ہو جاتی ہے. یہاں تک کی بات کلیئر ہو گئی؟ کیوں جی، اب ایک بات اور بھی سن لیجیے کہ جتنا کسی بندے کا عروج کامل ہوگا اتنا ہی اس کا نزول کامل ہوگا. جتنا کسی بندے کا عروج کامل ہوگا اتنا ہی اس کا، اگر عروج ناقص رہا تو نزول بھی ناقص رہے گا. آج کل کے زمانے میں سالکین کو فنا بقا ملتی ہے، مگر وقت کم دینے کی وجہ سے اس کی کیفیت بہت گہری نہیں ہوتی. ان کے اوپر انٹینسٹی میں کمی ہوتی ہے. سالک محسوس کرتا ہے کہ ایک وقت آ گیا، پورا دن اللہ کے وعدوں پہ بڑا بھروسہ، بڑا اللہ کا قرب، عجیب کیفیت ہوتی ہے. سالک کہتا ہے جی آج بڑی عجیب کیفیت تھی. اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے اس وقت فنا نصیب ہوئی تھی. तो आजकल की फिना तो थोड़े टाइम के लिए और उसकी इंटेंसिटी भी बहुत थोड़ी होती है। पहले वक्तों में जब सच का जमाना था, मुजाहिदे थे, तो उस वक्त फिना का वक्त भी ज्यादा होता था और कैफियत भी बहुत गहरी होती थी। लेकिन जो मेहनत करे तो आज के दौर में भी उसको फिना वका कामिल मिल सकती है। अब एक सवाल बात मुकम्मल होने से पहले, अगर आप उम्मत की तारीख को पढ़ें और सहाबाए कराम की करामात को गिनें तो मुश्किल से 1000 सफा, मुश्किल से 1000 सफा टोटल सहाबा की करामतें, जो 1,25,000 थे। टोटल कराम ने कितने वर्कों में आ जाएंगी? 1000 सफों में। और औलिया की करामते गिनना शुरू करें तो माशाल्लाह करोड़ों सफे, खत्म ही नहीं होती। ये क्या वजह है कि औलिया की करामते करोड़ों सफों में नहीं सिमटती और सहाबा की करामते सिर्फ 1000 सफे, इतनी थोड़ी करामत है? उसके पीछे एक राज है, बताना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? नींद भी तो आ रही है ना। छोड़ दे, समझने वाली बात है। देखें, करामत कहते हैं खर्क आदत को, खर्क कहते हैं फाड़ने को, आदत को तोड़ देना, आदत को फाड़ देना, आदत के खिलाफ काम करना, इसको खर्क आदत कहते हैं, करामत भी कह देते हैं। करामत सादिर होने की 2 वजूहात होती हैं। पहली वजह कि कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदे के हाथों से करामत सादिर करके लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालता है कि लोग उससे हिदायत पाएं और करीब हो जाएं। ये मौजज़े की निस्बत है, यूं समझे कि जैसे अंबिया को मौजज़े मिले तो उसको देख के काफिर मुसलमान हो जाते थे, तो अल्लाह ताला अपने बाद औलिया को करामतें दे देता है, उनकी करामतें देख के लोग मुसलमान हो जाते हैं। चुनाचे तातारी शहजादा मुसलमान हुआ था कि अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का लफ्ज कहा था और जंजीर टूट के नीचे गिर गई थी, तो वो काफिर था, मुसलमान हो गया। तो ये करामतें कई मरतबा सादिर होती हैं, मगर अल्लाह ताला अपने बाज बंदों से हिदायत का काम लेता है, उनके जरिए से करामतें सादिर होती हैं। और कभी कभी ये करामतें इंसान के नक्स की दलील होती है, इंसान के नक्स की दलील होती है। क्यों? कि जब लतीफा सैर मिनल्ला से नीचे आ रहा होता है तो वो उसको सैर फिल अशिया कामिल नहीं मिलती, वो ऊपर रह जाता है आलम असबाब से आलम अमर में। तो जब सब ऊपर रह जाएगा तो फिर उस बंदे की नजर किस पर रहेगी? अल्लाह पर रहेगी, असबाब के ऊपर नजर नहीं होगी, इसलिए कि वो आलम असबाब में भी पहुंचा ही नहीं। तो जब नजर अल्लाह की जात पर रहेगी तो ऐसे बंदे से बहुत ज्यादा खर के आदत के वाकयात होंगे, मगर ये उसकी सैर के अधूरा होने की अलामत होगी। सहाबा कराम की सैर कामिल थी, इतनी कामिल सैर थी कि उनको देख के जाहिर को पता ही नहीं चलता था कि ये एक आम आदमी है, ये कोई बहुत खास आदमी है। اور یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ باطن میں اتنی بلندی اور ظاہر میں اتنی سمپل زندگی کہ کافر آ کے یہی تو مصیبت کا رونا روتے تھے کہ مال حاضر رسول یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں. ان کو لگتا تھا یہ تو بہت ہی عام سی زندگی ہے، یہ کمال ہے. جب سیر کامل ہوتی ہے تو پھر شیخ کی ظاہر کی زندگی بالکل عام نظر آتی ہے، کوئی بہت انوکھی چیزیں نظر نہیں آتی. ہاں ایک چیز انوکھی ہوتی ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، اس کے سوا نظر نہیں آتا. اسی لیے کئی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی میں تو 9 سال رہا میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. 9 سال میں سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھا نہیں دیکھا، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جس کی سیر مکمل ہوگی تو اس کا نزول مکمل ہوگا اور وہ اسباب کا محتاج بن کے رہے گا، اسباب کے مطابق زندگی گزارے گا نا. چونکہ اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے نا کہ اسباب کے مطابق رہو. تو کمال یہ ہے کہ نظر تو اللہ کی ذات پر ہو لیکن انسان ظاہر میں اسباب کے اوپر عمل کر رہا. جیسے میدان احد میں صحابہ نے ایک ایک زرہ باندھی تھی اور نبی علیہ السلام نے 2 زرے. اب عام آدمی تو کہتا ہے کہ جی کیوں بھئی، اسباب کے اوپر عمل تھا نا، کہ اللہ کی منشا ہے اسباب کے مطابق رہو، ہم اللہ کی منشا کو پورا کریں. اتنا کامل عمل ہوتا ہے ان کا. اور انسان من سے اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ظاہر میں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے لوگ آ کے پوچھتے تھے من منکم محمد، اس لیے کہ محبوب کی ظاہر کی ایسی زندگی تھی کہ جیسے بالکل صحابہ کی زندگی ہوتی ہے. تو کمال کیا ہے کہ ظاہر اتنا نیچے آ جائے کہ لوگوں کو عام بندہ نظر آئے، حقیقت میں اس عام بندے کے اندر اس کی خصوصیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کمال ہے. اور اگر کسی کا لطیفہ اوپر رہ جائے تو وہ تو ہر طرف اللہ کی طرف توجہ، اسباب کی طرف دیکھنے نہیں، تو یہاں بھی کرامت تو وہاں بھی کرامت، جگہ جگہ کرامتیں صادر ہوتی رہیں گی. اس لیے صحابہ کرام کا نزول کامل تھا اور ان سے کرامتیں تھوڑی صادر ہوئیں، جو ہوئیں وہ اللہ نے دین کا کام لینے کے لیے صادر کروائیں. اولیاء اللہ کا نزول چونکہ ناقص ہوتا ہے لہذا اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کی طرف نظر. خرق عادت، خرق عادت. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ اہل اللہ اپنی کرامت کو اس طرح چھپاتے ہیں جیسے عورت اپنے حیض کے خون کے کپڑے کو مردوں سے چھپاتی ہے، اس طرح اہل اللہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عیب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عیب ہے. تو یہاں سے بزرگوں نے ایک سبق دیا، الاستقامت فوق الکرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ. شریعت پر استقامت تمام کرامتوں سے بڑی کرامت. یہاں تک بھی بات سمجھ آگئی. اب ایک مثال سے ذرا بات اور کلیئر ہو جائے تاکہ ہم مجلس ختم کریں. شیخ کا نام ہے حسن بصری رحمت اللہ، مرید کا نام ہے حبیب اجمی رحمت اللہ. شیخ کا نزول کامل اور مرید کا نزول ناقص. हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह देखा दरिया के किनारे हसन बसरी खड़े हैं, सलाम दुआ बातचीत, कैम छो हारू छो, अब थोड़ी देर बातें होती नहीं। तो उसके बाद हबीब अजमी कहने लगा कि हजरत मुझे जरा जाना है। तो हबीब अजमी ने दरिया के पानी पर पांव रखा और चलता हुआ उसने दरिया को कबूल कर दिया और हसन बसरी खड़े। तो नाकिस मुरीद करामत दिखा के चला गया और कामिल शेख कश्ती के इंतजार में। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पहुंचे तो देखा कि हबीब अजमी का वो जो सदरी होती है ऊपर लेने वाली वो पड़ी हुई है, वो खुदा का बंदा रख के चला गया। खड़े हो गए, भाई कोई चोरी कर लेगा, ये कहां चला गया। थोड़ी देर बाद हबीब अजमी आ गया। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हबीब अजमी ऐसे ही ये छोड़ के चला गया था। नहीं हजरत, मैं उस जात के सपुर्द करके गया था जिसने आपको हिफाजत पे खड़ा किया। अब जाहिर क्या लगता है कि हबीब अजमी बड़ा वली है, हालांकि हबीब अजमी नाकिस है, वो खिलाफ असबाब कर रहा है और हसन बसरी कामिल हैं कि असबाब के मुताबिक उनकी जिंदगी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह के पीछे पुलिस लग गई, वो चाहते थे कि इनको हम कोई ओहदा दें हुकूमती काम में, और हमारे मशायख इससे घबराते थे। वो कहते थे कि ज़ुबहा बगैर सिक्की, कबूल नहीं करते थे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह भागे, अल्लाह की शान आगे वो हबीब अजमी का कमरा जो था ना बना हुआ वो था। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह आए, हबीब अजमी किसी को मत बताना कि मैं कहां हूं, और कमरे में छुप गए। अब थोड़ी देर गुजरी तो पुलिस वाले भी आ गए। हबीब अजमी हसन बसरी को देखा है, कहते हां कहां देखा है, ये कमरे में। अब पुलिस वाले कमरे में गए तो उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा और हसन बसरी सुन रहे हैं, मगर अल्लाह ने उनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए, पुलिस वाले नहीं देख सके उनको। थोड़ी देर के बाद वो चले गए। जब चले गए तो हसन बसरी रहमतुल्लाह बाहर निकले, हबीब अजमी तुझे कहा नहीं था किसी को मत बताना, बता दिया था तो कौन सा उन्होंने देख लिया था। तो जाहिर देखने में लगता है कि हबीब अजमी का ईमान कामिल है और मशायख फरमाते हैं कि हसन बसरी कामिल शेख हैं और हबीब अजमी उनका अभी नाकिस मुरीद है, ये रास्ते का राही है, मुसाफिर है, मंजिल पे नहीं पहुंचा। तो जब नुजूल कामिल हो जाता है तो पहचान क्या कि जाहिर की जिंदगी बिल्कुल सादा हो जाती है, कोई देख के अंदाजा नहीं लगा सकता कि भाई ये कोई बहुत खास शख्सियत। तो इसलिए अल्लाह ताला से फिना भी कामिल मांगनी चाहिए और बका भी, और करामात का तलबगार नहीं रहना चाहिए, उसकी बजाय इस्तेकामत का तलबगार होना चाहिए कि अल्लाह हमें करामत की बजाय इस्तेकामत वाली जिंदगी नसीब। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك